के प्रातः क्लास है 4 मई 1968। भगवान वाच बच्चे जानते हैं, बाप वही राजयोग सिखाए रहे हैं जो 5-4 वर्ष पहले सिखाया था। बच्चों को ये मालूम है, दुनिया को तो मालूम ही नहीं है कि प्राचीन सहज राजयोग कौन सा है। तो फिर उन दुनिया वालों से पूछना चाहिए, गीता का भगवान कब आया था? दुनिया वाले क्या कहेंगे, कब आया था?
द्वापर युग
में आया था। अब द्वापर युग में भगवान आया था तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करने आया? भगवान आवेगा तो पापी कलयुग की स्थापना करेगा या पुण्यात्माओं की दुनिया स्थापन करेगा? नहीं तो भगवान के आने का फायदा ही क्या हुआ जब पाप की दुनिया और बढ़ गई? तो उनको जवाब देना पड़े। चलो दुनिया वालों को तो जवाब दे दिया, द्वापर में नहीं आया। पापी कलयुग की स्थापना नहीं की होगी। फिर प्रश्न उठता है कब आया? जरूर कहेंगे जो 4 युग हैं, चतुर्युगी है, उन 4 युगों में जो तमो प्रधान युग है, पाप का युग है, उसके अंत में ही आया होगा। नहीं तो पाप की दुनिया का अंत कौन करेगा सिवाय भगवान के? मनुष्य गुरुओं ने तो 2500 वर्ष हिस्ट्री में ये बात बताई दी। क्या कि हम इस पाप की दुनिया का अंत नहीं कर सकते? और ही पाप बढ़ता गया। ज्यो ज्यो गुरु लोग आते गए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आते गए, दुनिया में पापों की अभिवृद्धि होती चली गई। तो कलयुग के अंत में ही आकर के बाप भगवान सत्युग के पुण्यात्माओं की दुनिया की स्थापना करता है। फिर प्रश्न पैदा होता है कि भक्ति मार्ग के शास्त्रों में द्वापर में भगवान को क्यों दिखाई दिया, और वो भी कृष्ण भगवान को, कृष्ण के रूप में भगवान को क्यों दिखाई दिया? उसका जवाब ये है कि दुनिया साकारी है या निराकारी है?
साकारी
दुनिया है। साकारी दुनिया के रहने वाले मनुष्य भी
साकारी है,
साकारी स्टेज वाले हैं। तो जो जैसा होगा वो वैसे को ही तो पसंद करेगा। तो उन्होंने भगवान का रूप भी साकार समझ लिया। वास्तव में ये गीता पहले निराकारवादी रचना थी, भारतवासी तो तमो प्रधान हो गए इस बात को समझ नहीं सकते। विदेश के जो कीरो और कीत विद्वान हुए हैं, उन्होंने जो रिसर्च की है उस रिसर्च में उन्होंने बताया है कि गीता पहले निराकारवादी निरीश्वर रचना थी, कृष्ण का नाम इसमें बाद में कृष्ण के उपासकों ने डाल दिया। वैसे भी गीता के श्लोकों को देखा जाए गहराई से तो उसमें ढेर ऐसे श्लोक आते हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि भगवान गीता का निराकार था, अव्यक्त था, इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। तो प्रश्न था भगवान कब आया, शास्त्रों में लिख दिया द्वापर में आया। उनको समझाना चाहिए शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई हैं कहाँ की यादगार है, संगम युग की यादगार है। वास्तव में द्वापर के अंत में भगवान संसार में प्रत्यक्ष नहीं हुआ, ना महाभारत युद्ध कराया द्वापर के अंत में। वास्तव में भगवान जब आते हैं तो चारों युगों की शूटिंग कराते हैं, रिहर्सल कराते हैं, रिकॉर्डिंग होती है संकल्पों की। तो शूटिंग पीरियड में जब द्वापर युग की शूटिंग का अंत हुआ तब भगवान प्रत्यक्ष हुए। तो लंबी कथा हो जाती है समझाने के लिए, कोई भी ड्रामा होता है, कोई भी फिल्म होती है तो उसकी शूटिंग तो होती है। ये भी दुनिया एक बड़ा मांडवा है, इसकी शूटिंग संगम युग में होती है, और संगम युग में भी चार युगों का रिहर्सल गाया हुआ है। सतयुग की शूटिंग, त्रेता की शूटिंग, द्वापर की शूटिंग और फिर कलयुग की शूटिंग, ये चारों युगों की शूटिंग इसी संगम युग में होती है। भले संगम युग 100 वर्ष का है और वो शूटिंग भी भक्तों के हिसाब से नहीं मानी जाती है, भक्तों का काम है सुनना और सुनाना बस। हम श्रद्धायुक्त सुनते रहते हैं, दूसरों को सुनाते रहते हैं, बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। भगवान तो ज्ञानी आत्माओं को सुनाने के लिए आता है, ज्ञानी तो आत्मा भगवान को विशेष प्रिय है, उन ज्ञानी आत्माओं को सुना करके उनको समझाता भी है, एक एक वाक्य के हिज्जे हिज्जे करके समझाता है और बताता है कि चार युगों की शूटिंग अभी चल रही है। भगवान बाप बाप बन करके आता है, बल गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, वो माता भी है और पिता भी है, लेकिन पहले क्या है,
माता,
पहले माता है। माता हर घर में जानते हैं, माता बच्चों को बेसिक नॉलेज देती है कि हायर क्लास की नॉलेज सुनाती है, बेसिक नॉलेज सुनाती है। तो माता के रूप में भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो मृदुल रूप पकड़ता है कृष्ण की आत्मा, तो कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाती, लेकिन वो भगवान का रूप नहीं है। भगवान जो है वो तो बाप है, बीज बोने वाला भी है और बीज बोने के बाद फसल काटने वाला भी वो ही है। हम बीज प्रतपिता, मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो ज्ञान का बीज बोता हूं। ब्रह्मा बाबू को तो साक्षात्कार हुए परंतु उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आई कि इन साक्षात्कारों का अर्थ क्या है। तो ज्ञान का बीज कोई ने तो डाला, वाणारस में पंडितों के पास भटकते रहे, अपने गुरुओं से पूछा, किसी ने नहीं बताया। आखिरी उन्हें समाधान कहां से मिला, समाधान तो उन्हें वहीं से मिला जहां यादगार बनी हुई है बनी एंट्री की। बनी एंट्री यादगार है उस वृक्ष की, जिस वृक्ष के बारे में, षष्ठ रूपी वृक्ष के बारे में गीता में भी वर्णन आया है। ये षष्ठी एक प्रकार का वृक्ष है, इसकी जड़ें ऐसी गहराई में समाई हुई है जो ऊपर ऊपर से देखने में नहीं आती है। जड़ें और तना सारा लुप्त हो गया, दूसरे दूसरे धर्म की शाखाएं आज संसार में देखने में आ रही है, हिंदू धर्म का आदि मध्यंत किसी को पता ही नहीं है। तो बंगाल में जहां बाबा की दुकान थी वहां उस व्यक्ति को उन्होंने जाकर के पकड़ा, जिसके प्रति जीवन में उन्होंने अनुभव किया कि वो भागीदार ही सच्चा व्यक्ति है और विद्वान व्यक्ति भी है और बाबा का रिश्तेदार भी था। कौन था? बहनोई। लेकिन बाबा की दुकान बड़े सर्राटे से चलती थी, जोरदार दुकान चलती थी, और उसकी दुकान भागीदार की दुकान जोरदार नहीं चलती थी, बहुत हल्की दुकान, छोटी सी दुकान थी, उसमें कमाई नहीं होती थी। तो ये दो पार्टदारी हैं, एक है राम वाली आत्मा, एक है कृष्ण वाली आत्मा। राम वाली आत्मा जो पार्ट बजाती है वो वास्तव में संगम श्री कृष्ण का पार्ट बजाती है। तब जब ब्रह्मा की सोल अर्थात कृष्ण की सोल जो सत्युग में कृष्ण के रूप में जन्म लेना है वो शरीर छोड़ देती है, तो बताया कब आया? द्वापर के अंत में नहीं आया, लेकिन द्वापर योगी शूटिंग में आया। भगवान जो कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं, वो गीता का एपिसोड कब हुआ? संगम युग में हुआ या सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में हुआ?
संगम में।
शास्त्रों में तो लिख दिया द्वापर में हुआ। उसे पूछना चाहिए, ये बात कोई भी जानते नहीं है। तुम तो अभी ये गीता की एपिसोड की बातें प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। प्रैक्टिकल कैसे सुना जाता है?
साकार में।
साकार शरीर के द्वारा सुनाने वाला भी हो और साकार शरीर के द्वारा सुनने वाले पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले नंबर वार अर्जुन भी हो। नाम क्या रख दिया? अर्जुन।
अर्जुन
अर्थात अर्जुन का अर्थ क्या हुआ? अर्जन करना, कमाना, पुरुषार्थ का अर्जन करना है, जन्म जन्मांतर का भाग्य का अर्जन करना, कमाना। तो गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आवेंगे। ऐसे नहीं कोई क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं, ये भी नहीं कि इस्लाम धर्म की, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म के फाउंडेशन डालते हैं। नहीं, जो ऊंचे से ऊंचा आज सनातन देवी देवता धर्म पुराने से पुराना है उसकी स्थापना करते हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग जरूर है। नाम पुरुषोत्तम क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो भी पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं वो अच्छी अच्छी पुरुषार्थी आत्माएं इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही डिक्लेयर होती है, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। साधारण संगम नहीं है, बल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं परंतु विचारों को पता नहीं है कि हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम वर्ष क्यों आता है, कारण क्या है? कोई तो कारण होगा। कारण यही है कि हर चौथी वर्ष के चौथे युग के बाद चार युग जब बीत जाते हैं तो चार युगों के बाद ये पांचवा युग छोटा सा 100 वर्ष का संगम युग आता है। उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में हर चौथी साल पुरुषोत्तम वर्ष मनाते हैं। विचारों को पता ही नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है क्या? तुम बच्चों में भी जो कड़ुए कड़ुए हैं, दूसरों को तंग दुखी करते रहते हैं, उनको पता नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है उत्तम पुरुष बनने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर के पढ़ाते हैं। क्या? माँ नहीं पढ़ाती है, क्या बनने की पढ़ाई?
देवता बनने।
पुरुषों में उत्तम से उत्तम जो पाठ प्रत्यक्ष होते हैं, माला के मणके प्रत्यक्ष होते हैं, वो माँ के रूप में नहीं पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? बाप आकर पढ़ाते हैं और आकर के पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी उच्चारण करने के बाद, मुरलियां सुनाने के बाद चले जाते हैं, फिर हम बच्चे अपने आप पुरुषोत्तम बनते रहते हैं। नहीं, बाप खुद बाप के रूप में आकर के पढ़ाते हैं। राजयोग की पढ़ाई मनुष्य में उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण देवताएं। देवताएं उत्तम होते हैं, लेकिन देवताओं में भी उत्तम ये लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य देवता की एक रत्न लागी बात कहते हैं ना, तो ये हुआ पुरुषोत्तम संगम युग। ये पुरुषोत्तम संगम युग जैसे ही पूरा होता है, सारे संसार की आत्माएं उस विश्व पिता को पहचान लेती है। देवताएं तो जरूर सतयुग में ही है, बाकी सभी मनुष्य कलयुग में है। तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। असली ब्राह्मण सिर्फ संगम युग में ही होते हैं। क्यों? ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। चोटी के ब्राह्मण जो चोटी का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ और किसी युग में नहीं होता। जो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करा दे, ये तो पक्का पक्का याद करना है कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। नहीं तो कुल किसी को भूलता थोड़े ही है, परंतु यहाँ माया इस युग को भुला देती है। माया ऐसी है कि हमारी बुद्धि में से ये बात ही उड़ जाती है, हम कहाँ के वासी हैं। हम कलयुग के वासी नहीं है, कहाँ के वासी है? ऊंचते ऊंचे जो पुरुषोत्तम युग है वहां के वासी है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं, बहुतों को माया भुलाई देती है। अगर ये याद रहे कि हम ऊंचते ऊंच कुल के वासी, ऊंचते ऊंच कुल वाले ब्राह्मण देवी देवताएं सो ब्राह्मण कहे जाते हैं, तो अपनी चोटी भी याद रहे। कहते हैं मस्तक में देवताएं निवास करते हैं, भुजाओं में क्षत्रिय निवास करते हैं, पेट में वैश्य निवास करते हैं, और विराट पुरुष के पांव में शूद्र निवास करते हैं। सबसे नीचे का अंग कौन है? पांव। तो हम कहां के वासी हैं? हम तो उन देवताओं से भी ऊंचे जो मस्तक में निवास करते हैं, उन देवताओं से भी ऊंचे चोटी के वासी। चोटी क्या होती है?
ऊंची।
चोटी सतयुग में जो देवताएं होते हैं उनसे भी ऊपर चोटी होती है, जहां शिव का निशान बना हुआ है। चोटी में जब गांठ लगाते हैं स्मृति की, तो क्या बन जाता है? गोल गोल शिव का लिंग बन जाता है। हम वहां के वासी हैं, तो हमें याद रहना चाहिए कि शिव बाप आया हुआ है, परंतु माया भुलाई देती है। तुम पढ़ते भी हो राजयोग, समझाते भी हो, और फिर भगवान गीता का ज्ञान जिसको भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है सुनाए रहे, मनुष्य देवता बनाए रहे। बाप ने कहा काम महाशत्रु है, इस काम पर जीत पाने से तुम जगजीत बनेंगे। क्या क्रोध पर जीत पाने से जगजीत नहीं बनेंगे? लोभ मोह अहंकार के ऊपर जीत पाने से जगजीत नहीं बनेंगे? काय के ऊपर जीत पाने का विशेष पुरुषार्थ है? काम पर जीत पाने से तुम जगजीत बनेंगे। फिर जितना जो काम के ऊपर जीत पावेंगे, जीत पाने वाले एक जैसे होंगे कि परसेंटेज में होंगे?
नंबर वार
होंगे। 100% काम के ऊपर जीत पावेगा तो सारे जगत के ऊपर जीत पाने वाला कहा जाएगा, जगत जीत। परसेंटेज में होगा 99% तो पास हो गया, और 1% पतित बन गया। क्या 99% पास हो गया और 1% फेल हो गया, तो गिनती काय में कही जाएगी? जगत जीत में गिनती कही जाएगी?
नहीं।
जगत जीत होगा तो, लेकिन परसेंटेज में होगा। जो जगत जीत बनने वाला है اس کی اسسٹینسی میں نمبر ہو سکتا ہے لیکن جگت جیت کہاں نہیں جائے گا. لیکن باپ کہتے ہیں یہ تو راجدھانی تیار ہو رہی ہے, اس راجدھانی میں تو سب چاہیے, بڑے بڑے راجیادھیکاری بھی چاہیے, پرنتو بڑے راجیادھیکاری یا چھوٹے راجیادھیکاری یا وشو کے مالک بنیں گے تب, کب, جب کام وکار پر جیت پائیں گے. کلکتے سے سماچار آیا تھا کل پوترتا کی بات پر ڈبیٹ کرنے لگے. بچی نے لکھا کیسے کیسے منشیہ ملتے ہیں, منشیوں کے لیے بیکار تو جیسے خزانہ ہے. تو پوترتا کی بات پر خاص ڈبیٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. پوترتا کی بات کو جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. باپ سے یہ سمجھتے ہیں کہ باپ سے ہم کو یہ بھروسہ ملا ہے. کیا کیا بھروسہ ملا ہے؟ نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ لوکک باپ جس نے ہمارے شریر کو جنم دیا ہے اس سے ہم کو یہ بھروسہ ملا ہوا ہے. کون سا بھروسہ؟ بھکاری بننے کا. بالک بنتے ہیں نابالغ, چھوٹے بچے سے بڑے بنتے ہیں, داڑھی مونچھ والے بنتے ہیں, تو پہلے پہلے باپ سے یہ ورثہ ملتا ہے. کیا ورثہ ملتا ہے؟
بیکاری.
آپ بچہ بچیوں کی شادی کراؤ, یہ شادی کرانے کی بات بھی کس کی بدھی میں پہلے آتی ہے؟ کون سے سمبندھ ہے جن کی بدھی میں یہ بات آتی ہے کہ بچوں کی شادی ہونی چاہیے؟ ماں باپ کی بدھی میں پہلے بات آتی. باپ کہتے ہیں شادی نہیں کراتے ہیں, یہ تو شادی بربادی کراتے ہیں. منشیوں کے لیے وکار ایسے ہے جیسے خزانہ مل گیا. کتنے ڈھول مجیرے بجاتے ہیں,
دھوم دھام
بجاتے ہیں, سعادت مناتے ہیں. کام مہا شترو ہے, یہ باپ نے کہا ہے تو ضرور کام کو جیتنے سے ہی جگت جیت بنیں گے, اور ضرور باپ سنگم یوگ پر ہی آئے ہوں گے. مہابھارت مہابھاری مہابھارت لڑائی لگی, اور اس لڑائی میں دیکھو ہم بھی یہاں حاضر ہیں. کیا کیا پروف ہے کہ ابھی مہابھاری مہابھارت لڑائی کا سمے ہے؟ پروف یہ ہے, پہلا پروف تو یہ ہے کہ مہابھارت لڑائی میں دکھاتے ہیں کہ سینا 18 اکشونی تھی, اور ایک ایک اکشونی کی گنتی اتنی لمبی چوڑی دکھائی دی ہے جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو آج کی دنیا کی جن سنکھیا ہے وہی مہابھارت کی جن سنکھیا 18 اکشونی دکھا دی. 18 اکشونی مانے ہی 500-700 کروڑ.
18 اکشونی مانا کیا بابا؟
اکشونی گنتی بتائیے. اتنے ہاتھی تھے, اتنے گھوڑے تھے, اتنے پیدل سوار تھے, اتنے ایسے تھے, وہ سب ملا کر کے 18 اکشونی ہوتے. اس میں یادو, کورو, پانڈو سب دکھائے. باپ کہتے ہیں یہ سب ابھی یہاں حاضر ہیں. اور یورپ واسی یادو جن کے پیٹ میں سے موسل نکلے, وہ موسل کوئی لوہے کے موسل پیٹ میں سے نہیں نکلتے ہیں, یہ بدروپی پیٹ ہے, اس پیٹ میں سے وہ میسائل سے نکلے ہیں جن میسائل سے یہ ساری دنیا کو دھنس کر دیتے ہیں, اپنے سارے کل کا ناش کر دیتے ہیں. یہ امریکہ, یہ آسٹریلیا, یہ یورپ 2,500 سال پہلے تھے ہی نہیں, ابھی پھر ایسا یدھ سامنے کھڑا ہے کہ جب یہ ایٹم بم چھٹیں گے تو یہ پھر نہیں رہے, سب خلاص ہوں گے. یہ یادووں کے دیش ہیں, ایسے بھی نہیں ہے کہ کوئی سبھی کام کے اوپر جیت پہن لیتے ہیں. یادو اور کورو تو جیت پا ہی نہیں سکتے, جو جیت پہنتے ہیں وہ بچیں گے, اور جو جیت پہننے کا پرشارتھ ہی نہیں کرتے وہ اور ان کے دیش اور ان کی جاتی ان کا کل سارا ہی نشٹ ہو جانے والا ہے. وجے پہننے میں دیری لگتی ہے. مکھیہ بات تو یہی لکھتے ہیں کہ بابا ہم کو کام وکار نے گرا دیا, وشے ساگر میں اتوا وشے ویترین ندی میں ہم گر گئے تو ضرور باپ کا کوئی آرڈیننس ہے نا. جب یدھ ہوتا ہے تو آرڈیننس نکالا جاتا ہے نا, تو باپ نے بھی آرڈیننس نکالا ہے. باپ کا فرمان ہے کام کو جیتنے کا پرشارتھ کرو, کام کو جیتیں گے تو تم کو بڑا پرسکار ملے گا. کون سا پرسکار؟ جگت جیت ملیں گے. ایسے نہیں کہ جگت جیت بن کر پھر وکار میں جاتے ہوں گے, نہیں. ایک بار جگت جیت لیا تو پھر 2500 سال تک وکاری دنیا خلاص ہو جائے گی. جگت جیت یہ لکشمی نارائن ہے نا, ان کو کہا جاتا ہے سمپورن وکاری. دیوتاؤں کو سبھی نروکاری ہی کہتے ہیں, پرنتو لکشمی نارائن کو سمپورن نروکاری کہتے ہیں. دیوتاؤں کو سمپورن, سبھی دیوتاؤں کو سمپورن نروکاری
نہیں.
ہنومان کو, گنیش کو جب استوتی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سمپورن نروکاری
نہیں
کہتے. اس لیے سیڑھی کے چتر میں ہنومان کو اور گنیش کو کہاں دکھایا ہے پوجا ہوتے ہوئے؟ اترتی کلا کے یوگ میں دکھایا. دیوتا دھرم ہے ہی نروکاری, جس کو تم رام راج کہتے ہو وہ دنیا ہی وائس لیس ہے. یہ دنیا ہی وشیس ہے, وشے وکاروں کی دنیا ہے. ستیہ وہ تھا پوتر گرہست آشرم جو باپ نے استھاپن کیا ہے. باپ نے ابھی سمجھایا ہے تم پوتر گرہست آشرم کے تھے, ابھی 84 جنم لیتے لیتے تم اپوتر بنے ہو. ایسے کیوں کہا؟ 84 جنم لیتے لیتے آپ پوتر بنے ہیں یا 63 جنم لیتے لیتے آپ پوتر بنے ہیں؟
63
گرنا جو ہے اپوتر ہونا
63 جنموں
سے کہیں گے یا 63 جنموں سے پہلے اپوتر تھے؟
63 جنموں
تھے
پہلے اپوتر تو نہیں کہیں گے. دیوتائیں تو پوتر
تھے.
تریتا کے انتم جنم میں بھی دیوتائیں پوتر تھے یا پوتر تھے؟ پوتر تھے. پوتر کیوں تھے کہے؟
آتمک استھتی.
کیونکہ وہاں دیہ بہن جو ہے وہ کرمیندریوں تک نہیں آنے پاتا, گیانیندریوں تک ہی دیہ بہن رہتا ہے. جو بھی سکھ بھوگتے ہیں وہ گیانیندریوں سے بھوگتے ہیں یا کرمیندریوں سے بھوگتے ہیں؟ گیانیندریوں شریشٹھ اندریوں سے کرم بھوگتے ہیں. کرموں کا سکھ شریشٹھ اندریوں تک رہتا ہے, تو شریشٹھ اندریوں کا سکھ بھوگنے والوں کو شریشٹاچاری دیوتا کہا جاتا ہے. اور جب کرمیندریوں سے سکھ بھوگنا شروع کیا تو کرمیندریاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ ان کی جو استھتی ہے شریر میں کہاں پر ہے, نیچے ہے یا اوپر ہے؟
نیچے.
سیدھے ہاتھ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو ہاتھ پاؤں جو بھی کرمیندریاں ہیں کرم کرنے والی وہ سب نچلے انگوں میں ہیں, اس لیے بھرشٹ اندریاں کہی جاتی. بھرشٹ اندریوں سے جو آچرن کرتے ہیں سکھ بھوگتے ہیں ان کو بھرشٹاچاری کہا جاتا. تو بولا ابھی تم اپوتر بن گئے ہو, 84 جنم لیتے لیتے, ایسے کیوں کہا؟ 63 جنم لیتے لیتے آپ پوتر بن گئے ہو, ایسے کہنا چاہیے؟ सुख भोगने से आत्मा की शक्ति
क्षीण
होती है, कलाएं
कम
होती जाती हैं, चाहे वो ज्ञान इंद्रियों का सुख कोई भोगे और चाहे वो कर्म इंद्रियों का सुख, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगा जाए चाहे भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगा जाए, लेकिन आत्मा की शक्ति तो
क्षीण
होती है। अभी हमें क्या करना है? सुख भोगने की बात इस दुनिया का बुद्धि में से ही निकाल देनी चाहिए। हमें न श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगना है न भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगना है, अभी तो हमें
आत्मिक स्थिति में
उस स्वरूप को याद करना है जो न श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगता है न भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगता है। कौन? शिव बाबा। शिव बाबा सुख के परे की स्टेज में ले जाता है, खुद है भी वहां का रहने वाला। तो तुम जानते हो कि नई दुनिया जरूर वॉइसलेस होनी चाहिए। भगवान पवित्रता का सागर है क्या? कौन सा सागर? प्योरिटी का सागर है। पवित्र दुनिया की स्थापना करते हैं फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। नाम क्या है?
रावण राज्य
है। राम राज्य। राम राज्य नाम क्यों पड़ा?
एक मात्र
है राम माने क्या?
रमण करने वाला।
राम माने जो रमाता है, रमाना माने खेल खिलाना, भाई भी खेल खिलाता है, ज्ञान रथों से खेल खिलाता है। जिसका पार्टी है ज्ञान रथों से खेल खिलाना, उसको कहते हैं राम। उसकी याद में योगी लोग रमण करते हैं। किस राम की याद में? जिसमें वो निराकार आया, राम आकर के ज्ञान रत्नों से खेल खिलाता है। उसके राज्य का जो स्थापना होती है उसे राम राज्य कहा जाता है, और रावण राज्य उसे कहा जाता है जो रुलाता है। रावयते लोकान, जो लोगों को रुलाता है सो रावण कहा जाता है। रुलाना माने क्या? आंखों से ही रोना होता है,
मन से,
दिल से, मन से भी रोना होता है। कोई का दिल दुखता है तो भी क्या हुआ?
रोना।
तो भी कहेंगे रो रहा है। भले बाहर से रोना दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो चीज दिखाई पड़ती है उसमें ज्यादा ताकत होती है, या जो दिखाई नहीं पड़ती है दिल की आवाज में ज्यादा ताकत होती है?
दिल की आवाज में ज्यादा,
दिल की आवाज में ज्यादा ताकत होती है। तो यही बात है कि देखना है कि हम रावण संप्रदाय की ओर ज्यादा हैं या राम संप्रदाय की ओर ज्यादा हैं। रावण राज्य अर्थात आसुरी राज्य, ऐसा राज्य
आसुर।
सुर माने देवता, आ माने जो देवता
नहीं
है। अभी अभी आसुरी राज्य में तुम बैठे हो, अभी राम का राज्य नहीं है क्या? राम आया हुआ है जरूर इस सृष्टि पर, लेकिन राज्य किसका है?
रावण।
रावण का।
रावण का राज्य। मधुबन में माया का राज्य रावण का राज्य है या नहीं है? मधुबन में माया का राज्य रावण का राज्य आता है या नहीं आता है?
आता है।
माया आती है कि नहीं आती?
आता है।
आती है तो राम राज्य कहे कि रावण राज्य कहे?
रावण राज्य कहे।
सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य, जहां राम राज्य होगा वहां रावण राज्य नहीं होगा, जहां रावण राज्य होता है वहां राम राज्य नहीं होता। अभी तुम कहां बैठे हो?
रावण राज्य।
अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो। सारे दिन में अपने अपने दिल में देखना चाहिए कि हमने किसी को रुलाया तो नहीं, रुलाने वाला संकल्प तो नहीं पैदा किया, रुलाने वाला वाइब्रेशन तो नहीं फैलाया। ऐसा तो हमसे कोई कर्म नहीं हो गया कि कोई आत्मा रोने लगी। सवेरे से शाम तक देखना चाहिए। कोई दिन ऐसा जाता है जो मन से, वाचा से, कर्मणा से हम कोई को दुख न देते हो? ऐसा दिन कोई होता है? काउंट किया है? कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि हम सुबह से लेकर शाम तक कोई न कोई ऐसा कर्म न कर देते हो, कोई न कोई वाचा ऐसी न चला देते हो, कोई न कोई मनसा से संकल्प ऐसा न चला देते हो जिससे दूसरों को दुख हो जाता हो। तो देखो
उसका अंत कब होगा बाबा? उसका अंत कब होगा?
इसका अंत कब होगा? जब संकल्पों की शुद्धि हो जाएगी, जब एक शिव बाबा दूसरा न कोई याद आएगा। शिव जो है वो एक ही अभी ऐसा है जो सत्संकल्प चलाने वाला है और बाकी सब दुष्ट संकल्प चलाने वाले। एक शिव है जो कल्याणकारी वाइब्रेशन फेंकता है सारे संसार में और बाकी सब दुष्ट संकल्प करते हैं। तो दुष्ट संकल्पों से तो दुनिया रावण संप्रदाय की ओर जा रही है। तो ये दैवी राज्य की निशानी है क्या? क्या दैवी राज्य की निशानी है? दिव्य कर्म होंगे, दिव्य वाचा होगी,
संकल्प
और दिव्य संकल्प होंगे, दिव्य वाइब्रेशन होंगे। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी सवेरे सवेरे निकालो। क्या? तो ब्रह्मा कुमारी ने फटाफट सवेरे सवेरे प्रभात फेरी निकालना शुरू कर दी। अब इस स्थूल रूप में सवेरे सवेरे हम प्रभात फेरी निकाल लें वो करें या बेहद की प्रभात फेरी निकालें? हद की प्रभात फेरी में और बेहद की प्रभात फेरी में क्या अंतर है?
बाबा प्रभात माना क्या? बाबा
प्रभात माने सवेरा। हद का प्रभात क्या है? हद का प्रभात है जो हद का सूर्य निकलता है उस समय जो मौसम होता है, वातावरण होता है, उसको कहते हैं हद का प्रभात। और फिर बेहद का सूर्य भी है, वो कौन है?
ज्ञान सूर्य।
वो तो आया हुआ है तो प्रभात तो हो गया ना? है? हो गया तो प्रभात फिर ब्रह्मा कुमारी ठीक निकालती है। लेकिन माउंट आबू में तो सनसेट पॉइंट की यादगार है, सूर्य छिपने की यादगार बनी हुई है अभी तक, या सूर्योदय की यादगार बनी हुई है?
छिपने
यादगार कौन सी है?
छिपने की यादगार है,
सूर्य के छिपने की यादगार है। अभी सनराइज पॉइंट तैयार नहीं हुआ है, लेकिन माउंट आबू में सनराइज पॉइंट भी तैयार होगा, लोग सनराइज पॉइंट देखने जाएंगे। लेकिन सूर्य उदय होगा तब तो देखने जावेंगे, तब तो सनराइज पॉइंट प्रसिद्ध होगा। तो अभी सूर्य उदय हुआ है या नहीं हुआ है?
उदय हुआ।
उदय हुआ?
हुआ।
एक माता कहती नहीं हुआ, एक माता कहती हुआ है।
अभी अगर
सूर्य, देखो जब सूर्य निकल आता है सब कहते हैं देखो सूर्य निकला,
सूर्य निकला है।
अगर नहीं निकलता है, सिर्फ दिन ही दिन है, सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, तो बच्चे कहेंगे अभी कहाँ सूर्योदय हुआ?
पूरा दुनिया तो नहीं निकला बाबा, लेकिन
अच्छा अगर सूर्योदय हो जाए तो सबको निश्चय हो जाएगा सूर्योदय हुआ?
हो जाएगा।
तो अभी सबको निश्चय है?
नहीं
नहीं है तो उदय कहाँ हुआ?
नहीं हुआ।
अभी अभी निश्चय होता है, हाँ ये ज्ञान सूर्य आया हुआ है, और अभी अभी अनिश्चय पैदा हो जाता है। तो अंधेरा हुआ या उजाला हुआ? तो अंधेरा कहेंगे ना। निश्चय अगर पक्का रहे तो है उजेला, और निश्चय बीच बीच में कच्चा हो जाए तो हुआ अंधेरा। माना अभी ज्ञान सूर्य पूरा उदय हुआ नहीं कहा जा सकता। उदय होना माने सारा संसार ही स्वीकार कर ले क्या? बाप आ गया,
बाप आ गया,
हमारा बाप, हमारा बाबा आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों को नहीं आ गया,
पूरा दुनिया,
सारे संसार का बाबा, सारे संसार का भगवान बाप इस सृष्टि पर आ गया। तो उस समय प्रभात फेरी निकालने की बात है। अभी तो प्रभात हुआ ही नहीं है, सूर्य उदय हुआ ही नहीं है, तो प्रभात फेरी निकालने से क्या फायदा? उस समय तो मनुष्य सोए हुए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं, क्योंकि मनुष्य काम विकार में थक थक करके सो जाते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। थकावट इनमें होती है, इसमें काम विकार में, क्रोध विकार में कोई थकावट
नहीं होती,
थकावट नहीं होती है। प्रदर्शनी में भी अच्छी तब हो जब सेंटर भी हो। क्या ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी किसी को दिखाए, ढेर सारे ज्ञान रत्न सामने रख दे, प्रदर्शनी कर दे और ठिकाना दे ही नहीं, सेंटर है ही नहीं, तो बेचारा कहाँ जाएगा? तो प्रदर्शनी का भी फायदा कब है? जब
सेंटर,
जब सेंटर हो। प्रदर्शनी अच्छी तब कही जाएगी। भगवान वाच काम महाशत्रु है, प्रदर्शनी में समझा सकेंगे। इस पर जीत पाने से तुम जगह जीत बनेगी। ये लक्ष्मीनारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए, कहीं भी जाओ लक्ष्मीनारायण का चित्र और त्रिमूर्ति का चित्र सदैव साथ में पड़ा रहे। कैसे?
मन बुद्धि।
क्या एक चित्र पीछे लटका है, एक चित्र आगे लटका है, हर जगह गले में लटका हुआ हो, ऐसे
मन बुद्धि, मन बुद्धि
उद्रूपी पॉकेट में लक्ष्मीनारायण का चित्र का सारा ज्ञान होना चाहिए और त्रिमूर्ति के चित्र का भी सारा ज्ञान होना चाहिए, जो हम कोई को समझा सके हैं कि देखो ये तीन मूर्तियां हैं जिनके प्रत्यक्ष होने से, इन तीन चैतन्य मूर्तियों के प्रत्यक्ष होने से त्रिमूर्ति शिव निराकार भी संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तब कहेंगे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वो कपड़े का झंडा विजय विश्व के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करता है, ये कौन से झंडे की बात है, कौन से कपड़े की बात है, जड़ कपड़े की बात है क्या? नहीं, इन कोई चैतन्य कपड़े हैं, शरीर रूपी वस्त्र हैं, जिन शरीर रूपी वस्त्रों के द्वारा परमात्मा शिव अपना कार्य संपन्न कराते हैं, स्थापना पालना और विनाश। वो तीन शरीर रूपी वस्त्र इसी दुनिया में अभी मौजूद हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा का शस्त्र खत्म, वस्त्र खत्म हो गया। ब्रह्मा भी, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी माँ, जिसके लिए मुरली में भी बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। क्या? तो क्या दाढ़ी मूछ वाली जगदम्बा होती है? ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु स्तन पुरुष का है, इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता, तो निमित्त ओम राधे मम्मा को बना दिया। तो वास्तव में जगदम्बा कौन है?
ब्रह्मा।
दादा लेखराज ब्रह्मा है तो, लेकिन दाढ़ी मूछ वाला तन है, इसलिए यही आत्मा जब दाढ़ी मूछ वाला शरीर छोड़ दे, दुर्योधन दुशासन वाला जो पुरुष शरीर है वो छोड़ दे और कोई माता के चोले में प्रवेश कर, तब उसकी पूजा हो। ब्रह्मा की पूजा होती है या जगदम्बा की पूजा होती है? जगदम्बा की तो पूजा होती है, ब्रह्मा की तो पूजा होती है, अर्थ दोनों का एक ही है। जगदम्बा माने सारे जगत की अम्मा, ब्रह्मा माने ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, संसार की बड़े से बड़ी माँ कौन?
जगदम्बा।
तो तीन मूर्तियां इस समय भी संसार में मौजूद हैं, जो मूर्तियां सारे संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली है, इसलिए कहा जाता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये लक्ष्मीनारायण का चित्र, इसमें त्रिमूर्ति भी दी हुई है और लक्ष्मीनारायण का चित्र भी दिया हुआ है और साथ साथ में रचना का भी चित्र दिया हुआ है। नीचे राधा कृष्ण रचना भी है, ऊपर लक्ष्मीनारायण खड़े हैं जो रचयिता भी है। तो ये चित्र जरूर होना चाहिए, ट्रांसलेट का चित्र हो तो और अच्छा। क्या? और ट्रांसलेट के चित्र शरीर शरीर लटका लटका के घूमेंगे क्या? ट्रांसलेट का कैसे होगा? नहीं, जब बाप की अच्छी तरह से याद होगी तो चेहरा कैसा हो जाएगा?
खुश,
प्रकाश।
इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का चेहरा कैसा है? चेहरा ट्रांसलेट दिखाई पड़ता है कि नहीं? क्राइस्ट का चेहरा देखो, गुरु नानक का चेहरा देखो, महात्मा बुद्ध का चेहरा देखो, कैसा दिखाई पड़ता है? निराकारी ट्रांसलेट जैसा चित्र चित्र है, उनका चेहरा दिखाई पड़ता है ना, तो ट्रांसलेट का चित्र होना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। ट्रांसलेट का चित्र जरूर साथ में हो, फिर दूसरों की सर्विस करो। बैटरी आदि का प्रबंध रख सकते हैं, اب بیٹری یہاں کون سی ہے؟ نہیں ہمارے پاس ٹرانسلائٹ تبھی بنے گی جب ہم شیو بابا کی یاد میں ہوں گے. بیٹری ہماری بیٹری کون ہے؟ ہماری بیٹری تو اجیا نہیں ہے. ہم کو اس بیٹری کو چارج کرنے والی بیٹری کون سی ہے؟ شیو بابا. ہاں تو بیٹری آدھی کا پربندھ بھی رکھ سکتے ہیں. ایک ہی ہے سیڑھی. ٹرک میں جیسے پوجا میں دیویوں کو نکالتے ہیں نا, ایسے تم لکشمی نارائن کے چتر کو نکالو. دو تین ٹرکس نکالو, بڑے بڑے چتر بناؤ جس میں چتر دکھاتے ہو اور سمجھاتے رہو. کار نہیں نکالے, کار نہیں نکالو, کیا نکالو؟ ٹرک نکالو. ٹرک زیادہ وزن ڈھوتا ہے یا کار زیادہ وزن ڈھوتی ہے؟ دن پرتی دن چتروں کی وردھی ہوتی جا رہی ہے. تمہارا گیان بدھی کو پاتا ہے, وردھی کو پاتا رہتا ہے. نئے نئے چتر نکلتے رہتے ہیں. بچے کہتے ہیں سبھی چتر ٹرانسلائٹ کے رکھو. کیا ایک چتر نہیں, سبھی چتر ٹرانسلائٹ کے رکھو. کیا ایک بھی ایسا چتر نہ ہو, جڑ چتر رکھے یا چیتن چتر رکھے؟ پرتکشتا کیسے ہوگی؟ جڑ چتر تو بہت سارے دکھا دیے سنسار میں, پرتکشتا ہوئی کیا؟ خود بن کر کے جب تک نہیں دکھائیں گے چیتنیہ میں تب تک پرتکشتا ہونے والی نہیں ہے. تو ٹرانسلیٹ کے چتر ساتھ میں رکھو تو بھم کا بہت ہو جائے گا. ٹرانسلیٹ کے چتر بھی رکھ دیے, پردرشنی بھی رکھ دی, میلے ملا کھڑے بھی رکھ دیے, لیکن سنسار میں بھم کا آواز تو نہیں پھیلی. کب پھیلے گی آواز؟ جڑ چتروں سے آواز پھیلے گی یا چیتن چتروں سے آواز پھیلے گی؟ چیتن چتروں سے آواز پھیلے گی. باقی خرچے آدھی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ چیتن چتر بنانے میں خرچے کی درکار ہے ہی نہیں. 4 مئی 1968 کی وانی کا دوسرا دن, کیونکہ بچوں کی وردھی ہوتی رہتی ہے. جب بچوں کی وردھی ہوگی تو ٹرانسلائٹ کے چتر چاہے جتنے بنو, اس میں بھی غریب سادھارن ساہوکار سبھی پرکار کے بچے آ جاتے ہیں. شیو بابا کا بھنڈارا تو بھرپور ہے, اس میں کمی آنے کی کوئی بات نہیں ہے. جو بھنڈارا بھرتے ہیں ان کو وہاں کروڑوں مل جاتا ہے. اب یہاں کون سے بھنڈارے کی بات ہے؟ ٹرانسلائٹ کے چتر بنانے کے لیے کون سا بھنڈارا بھرپور چاہیے؟ استھول دھن کا بھنڈارا چاہیے یا پرسارتھ کا بھنڈارا چاہیے, یاد کا بھنڈارا چاہیے, گیان دھن کا بھنڈارا چاہیے؟ گیانی تو آتمائیں بھی ہوں, اور جتنی زیادہ گیانی ہوں گی اتنی زیادہ یوگی بھی ضرور ہوں گی. جتنا یوگ زیادہ تیکھا لگا ہوا ہوگا تو چہرہ بھی کیسا دکھائی پڑے گا, ٹرانسلائٹ کا چمکتا ہوا چہرہ دکھائی پڑے گا. تو جو بھنڈارا بھرتے ہیں ان کو وہاں کروڑوں مل جائے گا. تب تو باپ کہتے ہیں میٹھے میٹھے بچے ہو, پدما پدم پتی بننے والے ہو, سو بھی ایک دو جنموں کے لیے نہیں 21 جنموں کے لیے بننے والے ہو. باپ خود کہتے ہیں باپ جن بچوں سے کہتے ہیں وہ کتنے جنم کی پراپتی کرنے والے ہیں؟ اگر کوئی 20 جنم کی یا 19 جنم کی پراپتی کرنے والے ہیں تو باپ کے بچے نہیں ہیں, کیونکہ باپ جانتے ہیں یہ دوپہر اسے دوسرے دھرم میں کنورٹ ہو جائیں گے. یہ کچی آتما ہے. پکی آتما کتنے جنم لینے والی, کتنے جنم کا ورثہ ہو گیا ان کا؟ پورے 21 جنم. میں ابھی خود ڈائریکٹ آیا ہوا ہوں. کیا ڈائریکٹ آیا ہوا ہوں؟ ڈائریکٹ آنا اور تھرو آنا کیا مطلب؟ ارے ماں کے روپ میں نہیں آیا ہوا ہوں, ماں کے دوارا نہیں آیا ہوا ہوں, میں خود ڈائریکٹ باپ کے روپ میں آیا ہوا ہوں. تمہاری ٹیری پر بحث لے کر کے آیا ہوں. کیا تمہاری بدھ روپی ہتھیلی میں ساری پلاننگ تمہاری بدھی میں ڈال دی کہ نئی دنیا کا سنگھٹن کیسے تیار ہوگا؟ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور باپ کا ورثہ ان کی پیڑھی پر آ جاتا ہے. کیا بچہ پیدا ہوا کروڑپتی باپ کا بچہ پیدا ہوگا تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی باپ کے کروڑ کا مالک بن گیا نا.
بن گیا
ہاں, تو تیری پر بحث لے کر کے آیا ہوں. باپ کہیں گے یہ گھر بار یہ ساتھ تمہارا ہے. یہ بیعت کا باپ بھی کہتے ہیں تم میرے بنتے ہو تو میرا سورگ کا ورثہ بھی تمہارا ہو جائے. مجھے کیا کہتے ہیں ہیونلی گاڈ فادر. ہیونلی گاڈ فادر کے بچے ہیں تو ہم نرک میں ہونے چاہیے یا سورگ میں ہونے چاہیے؟ سکھی ہونا چاہیے یا دکھی ہونا چاہیے؟
سکھی ہونا چاہیے.
ہم سکھ کے ساگر کے بچے ہیں تو ہمارا چہرہ گھڑی گھڑی لٹک کیوں جاتا ہے؟
حساب
کتاب ابھی کرم کوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. تو جب تک کرم کوٹنے میں لگے ہوئے ہیں راون راج میں, کرم کوٹنا جب بند ہو جائے تو جیسے مایا سے ہمارا چھٹکارا ہو جاتا ہے. تو وشو کی بات صحیح تمہاری, تم وکاروں پر جیت پاتے. اس لیے باپ کو کالوں کا کال مہاکال کہتے ہیں. کیا وکاروں پر جیت پانا من کال کے اوپر جیت پانا. مہاکال کوئی مارنے والا تھوڑے ہی ہوتا ہے, مہاکال تو کال پر جیت پہنانے والا ہے. مہاکال کی تو مہما گائی جاتی ہے. سمجھتے ہیں بھگوان نے یہ مجھے تو بھیجا کیا؟ کیا کہتے ہیں دھرم راج نے یمدوت بھیجا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ باپ آ کر کوئی یمدوت بھیجتے ہیں مارنے کے لیے. یہ سبھی یہ بھکتی مارگ کی بات ہے. تو یمدوت بھیجنے کا جو بھکتی مارگ میں گائن ہے مانتے ہیں کہ یمدوت آتے ہیں تو مار کر کے لے جاتے ہیں دھرمراج کے دربار میں. اس کا کیا مطلب ہوا؟
کل آئے
نہیں, کوئی گیانی آتما ایسی ٹکراتی ہے جو ہمارا اس دنیا سے کنٹک کٹ جاتا ہے. ہم جیتے جی مر جاتے ہیں, بھگوان باپ کے بن جاتے ہیں. باپ کہتے ہیں یہ گیان کی باتیں ہیں. میں کالوں کا کال ہوں. پہاڑی لوگ مہاکال کو بہت مانتے ہیں. کیوں؟ یہ میدان میں رہنے والے لوگ مہاکال کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کا کیا راز ہے؟ وہ ہیں استھول حد کے پہاڑی, حد کی اونچی اونچی پہاڑیوں پر رہنے والے, اور ہم ہیں کیسے
اونچی استھتی.
ہاں, جن کی اونچی اسٹیج ہے, جو باپ کی یاد میں اونچے اونچے اڑتے رہتے ہیں, سوکھم بتنواسی بن کے رہتے ہیں یا تو پرم نام واسی بن کر کے رہتے ہیں. وہ ایسی اونچی اسٹیج میں رہنے والے, نیاکاری اسٹیج میں رہنے والے, منن چنتن منتھن کرنے والے ایسے مہاکال کے بچے جو ہیں وہ اونچی اسٹیج میں رہنے کے کارن ان کو پہاڑ دکھا دیا. شنکر کو بھی کہاں دکھاتے ہیں؟ کہاں دکھاتے ہیں؟ شاستر میں کہاں کا واسی؟ کیلاش, کیلاش پروت کا دیکھا واسی دکھاتے ہیں. تو کیا کیلاش پروت بیٹھا ہوا ہے؟ کیلاش پروت بیٹھے ہونے کی بات نہیں ہے, یہ اونچی اسٹیج کی بات ہے. مہاکال کا مندر نہیں بناتے ہیں. کیا وہ کہیں ایک جگہ ٹک کر کے نہیں رہتا ہے کہ پہاڑیوں کو کوئی مندر بنا دیا ہو وہاں رہتا ہو؟ نہیں, جہاں تہاں جھنڈیاں لگا دیتے ہیں. یہاں وجے ہو گئی, وجے کی جھنڈی یہاں لگا دی, وہاں وجے کی جھنڈی لگا دی, وہاں وجے کی جھنڈی لگا دی. جہاں جہاں جھنڈیاں لگا دیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں مہاکال ہے. باپ تو بیٹھے بچوں کو سمجھاتے ہیں. یہ بھی سمجھتے ہو؟ یہ تو رائٹ بات ہے. باپ کو یاد کرنے سے ہی جن جنمانتر کے وکرم وناش ہوتے ہیں. تو ایسے باپ کے آنے کا پرچار کرنا چاہیے نا کہ باپ آیا ہوا ہے. پرچار کون کرے گا؟ نہیں, پرچار تو وہی کرے گا جس کو خود نشچے ہوگا. خود نشچے ہوگا تو دوسروں کو بتائے گا باپ آیا ہوا, ٹھاکر سے بتاوے گا. اور خود ہی کوئی کوئی بات میں انشچے پیدا ہوتا جاتا ہے. पता नहीं आया हुआ है कि नहीं आया है, ऐसा पाप होता है क्या? जब बुद्धि अनिश्चय बुद्धि मरणते होता जाता है, मर मर के जी रहा है, तो दूसरों को क्या समझाएगा? कुंभ के मेले आए तो बहुत लगते हैं, तो उनमें जाकर के प्रचार करना चाहिए ना। स्नान करने का भी बहुत होता है महत्व, वो है हद के कुंभ के मेले। यहाँ कौन सा कुंभ का मेला है? अरे मेगा प्रोग्राम हो रहा है, ज्ञान तो सुनाया जाता है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बातें तो की जाती है ना। तो कुंभ माने गड़ा, ज्ञान कलश का मेला हो गया, महत्व तो है। कुंभ के मेले में भगवान होता है वहाँ, क्या कि नदियाँ इकट्ठी होती है, नदियों पोखरों का मेला होता है, तो वहाँ भी जाना चाहिए। वहाँ जाकर के तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5-4 वर्ष के बाद मिलता है, उसे बांटना चाहिए, फिर नहीं मिलेगा। वास्तव में इस ज्ञान का नाम अमृत है। अमृत नाम क्यों दिया? वो अमृत तो नहीं है, ऐसा कोई अमृत तो नहीं है कि पीने से कोई अमर बन जाए, फिर इसका नाम अमृत क्यों है?
विचार सागर
है,
विचार सागर, ज्ञान का विचार सागर
नहीं। इस ज्ञान का अमृत नाम इसलिए है कि जो रोज इसे पीते रहते हैं उनको माया या काल खा नहीं सकता, वो मरते नहीं है ज्ञान में। ज्ञान में कौन मरते हैं? कोई एडवांस ज्ञान में आ गया तो मरेगा कौन? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, कौन बनेगा?
जिसे माया पचा,
जो रोज ना, जो रोज ये ज्ञान अमृत नहीं पिएगा तो मरेगा। जो रोज पीने वाला है, दूसरों को देने वाला है, पिलाने वाला है, वो कभी इस ज्ञान में मरने वाला नहीं बन सकता। वास्तव में इसका अमृत नाम इसलिए पड़ा है, क्या अमृत तो प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम अमृत है। तो ये पढ़ाई है, बाकी ये सभी भक्ति मार्ग के नाम है जो बाप बैठ समझाते हैं। ये अमृत कलश नाम क्यों दिया है? अमृत नाम सुनकर के चित्रों में पानी दिखाई दिया है, वास्तव में उस पानी की बात नहीं है, ये तो ज्ञान अमृत की बात है। अमृत को मंथन करने से उसमें से सार निकलेगा, पानी को मथने से कुछ भी निकलता नहीं है। माना भगवान बाप की जो वाणी है, जो वाणी ब्रह्मा के मुख से सुनाई गई है, वेद वाणी कही जाती है, उस वाणी को अगर हम दूसरों को सुनाएंगे मंथन किया हुआ तो अमृत है। अगर उस वाणी को ऐसे ही पढ़ करके सुना दिया, मनन चिंतन मंथन कुछ भी है ही नहीं, तो वो अमृत नहीं है, पानी है। वो गंगाएं होती हैं, पानी की गंगाएं होती हैं, या अमृत की गंगाएं होती हैं?
पानी की
गंगाएं होती हैं, क्योंकि उनके पानी को आलोड़न करने से, बिलोने से कोई मक्खन नहीं निकलता। तुम जो मनन चिंतन मंथन करके बात सुनाते हो उससे तो नया सार निकलता है, मक्खन निकलता है। तो वास्तव में पढ़ाई को भी अमृत नहीं कहा जा सकता। बाप कहते हैं मैं अभी तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता हूँ, पढ़ाई से तुमको ऊंच पद मिलता है, सो भी ये पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ और कोई मनुष्य मात्र ये ज्ञान की पढ़ाई, राजयोग की पढ़ाई पढ़ा नहीं सकता। भगवान को कोई ऐसा मुझा हुआ रूप तो नहीं है क्या? है? ये तो बाप आकर इनमें पढ़ाते हैं, मुझा हुआ रूप कौन सा है? क्या भुजा हुआ रूप कौन सा? अरे शंकर को जो बहुरूपियापना दिखा दिया है, कहीं सांप लिपटे हुए हैं, कहीं बिच्छू लटके हुए हैं, कहीं तुकताड़ी दिखा दी है, कहीं डमरू दिखाई दिया है, कहीं त्रिशूल दिखाई दिया है, कहीं मृगशाला दिखा दी है, कहीं बागंबर दिखाई दिया है, ये सब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये बहुरूपिया क्यों बनाया हुआ है? तो बहुरूपिया जो बनाया हुआ है उसका अर्थ किसी को समझ में आता है? जब अर्थ समझ में ही नहीं आता है तो मुझा हुआ रूप है कि मुझान उसको देख करके खत्म हो जाती है। अरे ऐसा भगवान होता है? तो भगवान को कोई ऐसा मुझा हुआ रूप नहीं है, ये तो शिव बाप उसमें आकर के पढ़ाते हैं। तो शिव बाप की जो खासियत है उसमें प्रवेश करने से वो सारी खासियतें दिखाई गई हैं। उसको समझना है और दूसरों को समझाना है, और बाप ही आकर के समझाते हैं उस मुझे हुए रूप को, और कोई दूसरा बाप का परिचय दे भी नहीं सकता। अच्छा, तो